प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन में दैनिक सत्संग प्रवाह क्रम में शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का प्रसंग चल रहा है, जिसके प्रथम मंत्र पर हम लोग विचार चिंतन कर रहे थे। आइए एक बार इस मंत्र का पुनः उच्चारण कर लें, फिर इसके अर्थ गांभीर्य को हम लोग देखेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनाम् मा गृधः कस्य स्विद्धनाम् ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम्। एक उत्तम निष्ठा स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवती वेदवाणी बहुत सुंदर मंत्र बोल रही है। इदं सर्वम ईशावास्यम्, ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सब का सब प्रत्यक्ष दृश्य जगत, इस दृश्यमान जगत को एक ईश्वर के द्वारा आच्छादित कर दीजिए। यत्किंच जगत्याम जगत, जो भी कुछ है इस पृथ्वी के ऊपर, जगत्याम जगत, पृथ्वी पर जो भी चराचर सब दृश्य मात्र दिखाई पड़ रहा है, एक ईश्वर दृष्टि से आच्छादित कर देने योग्य है। जिस नाम और जिस रूप में हमारी दृष्टि अटकी हुई है उसको पार कर जाना चाहिए। नाम और रूप का बाध करके नाम रूप में जो सत्यत्व बुद्धि है उसको बाधित करके और मनुष्य को अपने आप की रक्षा कर लेनी चाहिए। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, उस बाधात्मक त्याग के द्वारा नाम रूप के प्रति जो सत्य भावना सत्य बुद्धि बनी हुई है उसको बाधित करो, और उस बाध के द्वारा ही उस त्याग से आत्मानं पालयेथा, अपने आप की रक्षा करनी चाहिए। और ऐसे ऐष्णात्रय से ऊपर उठे हुए व्यक्ति को फिर किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, जिसके लिए श्रुति बोल रही है मा गृध कस्य स्विद्धनम्। गृध मा, अभिलाषा मत करो, आकांक्षा मत करो, इच्छा मत करो। जो अनृत पदार्थ है, मिथ्या पदार्थ है, उनकी आकांक्षा छोड़ो। कस्य स्विद्धनम्, भला धन है किसका, यह एक उपलक्षण है। क्योंकि संसार में खास करके मनुष्य धन की अभिलाषा करता है, धन की आकांक्षा करता, धन के पीछे दौड़ता है। तो जिस प्रकार से धन के पीछे दौड़ रहे हैं और जिसके लिए धन चाहिए वो शरीर और शरीर के साधन, शरीर के अपने सब के सब क्या हैं, ये नाम रूप से दिखने वाले मिथ्या ही है। इसलिए वृद्धा मत करो, भला धन है किसका, अर्थात मिथ्या वस्तु जो होती है वो किसी की भी नहीं होती है। मिथ्या वस्तु केवल दिखने मात्र की होती है, जब उसके मूल में शोधन करने जाओगे तो स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए गृधा मत करो, श्रुति बहुत सुंदर मंत्र बोल रही है। कल इस पर विचार कर रहे थे, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईश्वर शब्द को हम देखते थे, ईशा का अर्थ क्या है, ईश की व्याख्या कल मंत्र से हो रही थी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर कौन है, जो करने में भी समर्थ हो नहीं करने में भी समर्थ हो, अर्थात उसे ईश्वर के ऊपर कोई ईश्वर नहीं कि जिसके भय से उसको कुछ करना पड़े, नहीं चाह करके भी कुछ करना पड़े। बड़ी बड़ी संसार की जो शक्तियां हैं उन बड़ी शक्तियों के ऊपर भी कोई महान शक्ति है जिसके भय में उन्हें अपनी मर्यादा में रहना पड़ता है। श्रुति का मंत्र आता है, भयाद अस्य अग्निस्तपति भयाद तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावते पंचम। है किसी का भय जो अग्नि तप रहा है, किसी के भय से तो तप रहा है, सूर्य तप रहा है, उसको भी किसी का डर है, किसी का भय है, नहीं तो वो अपनी प्रक्रिया अपना स्वभाव छोड़ भी तो सकता है। भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावती, इंद्र देवता को भी कोई भय है, जिस भय के कारण इंद्र देवता वृष्टि कर रहा है, भय है, डर है उसको, क्या जवाब दूंगा, उसके ऊपर भी कोई इंद्र है, इंद्र के ऊपर भी कोई इंद्र है, कोई महान शक्ति है, इसलिए इंद्र देवता को भी उसके भय में अपना काम करना पड़ता है। वायुश्च चौथा जो वायु चल रहा निरंतर, उस वायु देवता को भी तो किसी का भय है, वो विश्राम क्यों नहीं कर लेता, अनवरत रूप से वायु चल रहा है, और तो और मृत्यु देवता दौड़ रहा है जिसके भय में, सारी की सारी दुनिया जिस मृत्यु के भय से भाग रही है, जिस मृत्यु से बचने की पुरजोर चेष्टा कर रही है, मरे नहीं मरे नहीं मरे नहीं, लेकिन इतना प्रबल मृत्यु है, आप कुछ भी उपाय कर लो और दौड़ करके कहीं भी जाओ, इस शरीर को मृत्यु के मुंह से बचा नहीं सकते। उस काल के गाल में शरीर समाविष्ट होगा ही होगा। सारी दुनिया जिस मृत्यु से भयभीत है, वो मृत्यु भी किसी के भय से दौड़ रहा है। वो जो तत्व है जिसका भय सबके ऊपर है, वो जो महान तत्व है, भला वो किसके भय में काम कर रहा है, जिसके भय में बड़े बड़े देवता अपना अपना कर्तव्य का निर्वाह नियमित रूप से कर रहे हैं, जिसके भय में सब कुछ चल रहा है, उसको किसका भय है, जिसका भय सबको है उसको किसी का भय है। बोले वही तो अकर्तुम समर्थ ईश्वर है, उसके ऊपर कोई किसी का भय नहीं होता है, वो परम स्वतंत्र सत्य तत्व है। इसलिए ईश्वर वही है जिसके ऊपर कोई ईश्वर न हो, जिससे और कोई महान न हो, जिसके पीछे कोई भय का निमित्त न हो, वो परमात्मा वो ईश्वर है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, उसको तो किसी का भय नहीं है, लेकिन वो स्वतंत्र सत्य है, सबसे ऊपर होकर के भी परम स्वतंत्र है, महेश्वर है, वो जैसा चाहे जैसा सोचे वैसा कर सकता है। अन्यथा कर्तुम समर्थ है। इस संसार में जो हो रहा है एक प्रक्रिया के तहत चल रहा है, उस प्रक्रिया को भी जो बदलने में समर्थ होता है वो है ईश्वर। कोई ऊपर से गिरता है, ठीक है उसके हाथ पैर टूटने ही हैं, लेकिन ईश्वर चाहे तो अन्यथा कर देते हैं। कभी एक बार अखबार में पढ़ा, कोई व्यक्ति अपने भवन की तीसरी की चौथी मंजिल से जाकर के छलांग मार गया और नीचे कोई कार खड़ी थी उसके छत पर गिरा। कार की छत तो पूरी डैमेज हो गई लेकिन वो व्यक्ति बाल बाल बच गया। अद्भुत शक्ति है, कुछ भी कर सकता है ईश्वर। एक्सीडेंट हुआ दो व्यक्तियों का, आमने सामने टकराए, गाड़ी के ऊपर स्कूटर पर पति पत्नी दोनों बैठे और बीच में छोटा सा बालक बैठा हुआ है। एक्सीडेंट हुआ, झटके के साथ बालक उछट करके रोड से साइड में जा गिरा और पति पत्नी दोनों वहीं पर गिरे, सामने वाली गाड़ी कुचलते हुए आगे निकल गई, लेकिन बालक बाल बाल बच गया, क्रोच भी नहीं लगी। अन्यथा कर्तुम समर्थ है ईश्वर। ईश्वर वो है जो अन्यथा करने में भी समर्थ है। कुछ हो रहा है और होते होते कुछ का कुछ कर दे। इस प्रकार का जो ईश्वर है वो माया शक्ति विशिष्ट ईश्वर कहलाता है। अपनी माया शक्ति के द्वारा कुछ भी ईश्वर कर सकता है। अब इस ईश्वर की जहां यहां पर बात चल रही है, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत को आच्छादित कर देने की बात कही है, सारे जगत को आवृत करना है जिसके द्वारा, थोड़ा यहां विचार करना है कि वो माया शक्ति विशिष्ट ईश्वर है या माया शक्ति उपहित ईश्वर है। यहां जिस ईश्वर की बात चल रही है वो ईश्वर है जो माया भी जिसके अधीन काम कर रही है। भगवान गीता में कहते हैं मम माया दुरत्यया, ये जो मेरी माया है इसका अत्यय करना बड़ा कठिन काम होता है। ये माया सबको अपने अधीन कर लेती है, सब माया के वश में हो जाते हैं, लेकिन वो माया के भी अधीन नहीं है, माया से भी परे है। प्रकृति से भी जो पर तत्व है उस परमात्मा को, उस पूर्ण तत्व को, उस पुरुष को ही सर्वत्र दर्शन करने की बात श्रुति यहां पर बोल रही है। सब जगह उसी को देखिए। कैसे देखेंगे? कल और परसों हम लोग विचार कर रहे थे कि इसी प्रकार से देखना है। कारण और कार्य को एक बार देखिए, अध्यारोप करके देखो आप। वही एक परम सत्य परमात्मा है जिसने एक से अनेक होने का संकल्प किया है, पर सारे के सारे जगत को एक से अनेक होने का संकल्प करके सर्जन किया है। वो सर्जन करने वाला अपने से भिन्न कोई सामग्री कहीं से लेकर के नहीं आता है, अपने संकल्प से ही संपूर्ण जगत को प्रकट कर रहा है। एक सिद्ध पुरुष अपने सिद्धि से कुछ का कुछ दिखाता है, एक जादूगर अपने जादुई शक्ति से कुछ का कुछ दिखा देता है, लेकिन वहां पर सिद्ध पुरुष ही सत्य होता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के नाम और रूप में दिखाई पड़ने वाला दृश्यमान जितना भी जगत है, वो सारा का सारा जगत उस परमात्मा के संकल्प शक्ति का ही विलास है। सत्य तो वो परमात्मा ही है, इसलिए अस्थि भाति प्रिय रूप से, सचित आनंद रूप से उस परमात्मा का ही दर्शन करने की बात श्रुति यहां पर कह रही है। जो कुछ देख रहे हैं सारा का सारा जगत, वहां पर भी आप उस परमात्मा अंश को देखिए। इस आवरण को बताने के लिए, इस प्रक्रिया को समझाने के लिए महापुरुष एक बहुत अच्छा छोटा सा उदाहरण देते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। कल्पना करो एक गिलास है और वो गिलास आधा दूध से भरा हुआ है, आधा गिलास दूध से भरा हुआ है। अब एक व्यक्ति है जो भूखा है और दूध पसंद व्यक्ति है, उसको दूध सबसे अच्छा लगता है, उसे आप वो गिलास पकड़ाएंगे और वो आपका बहुत अजीज है, आपका मिलने वाला खास मित्र है, मुंह लगा यार है, तो आधा गिलास दूध देते ही वो सामने वाला क्या जवाब देगा? अरे मित्र, भला अगर दूध ही पिलाना तो कम से कम गिलास को तो भर करके लेकर के आता, तुम्हारा गिलास तो आधा खाली है, यही तो जवाब देगा। तुम्हारा गिलास आधा खाली है, लेकिन कल्पना करो कि वो पंजाबी गिलास और किसी गुजराती भाई को दिया जा रहा हो, और जो सात बार खाकर के बैठा हुआ हो। गुजरात में कम खाने की परंपरा है ना, बहुत कम खाते हैं, इतना जरूर है कि बार बार खाते हैं, लेकिन बहुत कम खाते हैं। अब उसने देखा कि पंजाबी गिलास, इतना बड़ा गिलास और वो भी आधा भरा हुआ है, हमारे गुजराती गिलास तो इस आधे गिलास से चार पांच बनाए जा सकते हैं। वो कहने लगा, मैं इतना दूध नहीं पी सकता, आधा भरा हुआ और वो भी पंजाबी गिलास, आधा भरा हुआ है, इतना मैं नहीं पी सकता। अब बताइए, पहले जिस भूखे व्यक्ति ने, दूध पसंद व्यक्ति ने जिस गिलास को देखा है, उसी गिलास को वो गुजराती भाई जो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पीने वाले हैं, ठाकुर जी की तरह भोग लगाने वाले हैं, वो भी देख रहा है कि नहीं, बताइए। पर गिलास को वो कौन सा भाग देख रहे हैं? एक गिलास के भरे हुए अंश को देख रहा है, बहुत ज्यादा भरा है, आधा भरा हुआ है, और एक उस गिलास के खाली भाग को देख रहा है, अरे आधा खाली है। देख दोनों ही गिलास को ही रहे हैं, परंतु एक भरे हुए अंश को देख रहे हैं और एक खाली अंश को देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत है, सारा का सारा चर अचर जगत है, सब के सब हम देख तो उस जगत को ही रहे हैं ना, हमारी आंखों के सामने कोई और तो नहीं है, सारी दुनिया ही तो दिखाई पड़ रही है। यथकिंच जगत्याम जगत, इस पृथ्वी के ऊपर जितना भी चलायमान चर अचर जितना भी जगत है, हम सब उसी को तो देख रहे हैं। ज्ञानी पुरुष भी उसी को देख रहे हैं और अज्ञानी भी उस जगत को ही देख रहे हैं, लेकिन दोनों की दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। एक दृष्टि है जो शास्त्र दे रहा है, और एक दृष्टि है जो हमें परंपरा से, जन्म से ही सिद्ध है, संस्कारों से ही सिद्ध है, अनादि काल से सिद्ध है। एक वो दृष्टि है जिससे हम लोग देख रहे हैं दुनिया को, ये मेरा और ये तेरा, ये उपयोगी या अनुपयोगी, बस अपना पराया करके देख रहे हैं, अच्छे बुरे करके देख रहे हैं, सारी दुनिया को राग और द्वेष से देख रहे हैं। एक तो वो व्यक्ति है जो दुनिया को इस तरह से देख रहा है, वो उनकी दृष्टि केवल नाम और रूप के ऊपर ही पड़ी हुई है। नाम रूप को लेकर के ही व्यक्ति कहीं अनुकूल में आसक्ति कर बैठता है और कहीं प्रतिकूल रूप से सामने आने वाले से द्वेष कर बैठता है, और उसका ये राग और जो द्वेष है वस्तु व्यक्ति पदार्थों के प्रति, वो राग और द्वेष ही उसके जीवन में अशांति का कारण होता है। दुनिया की यही दृष्टि होती है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति गिलास के खाली भाग को देख रहा है, अज्ञान काल में मनुष्य इस संसार के भी खाली भाग को ही देख रहा है। इस संसार में भी दो अंश हैं, एक भरा हुआ अंश है और एक रिक्त खाली अंश है। इस जगत का खाली अंश कौन है? नाम और रूप। इसको खाली क्यों बोलते हैं, इसको रिक्त क्यों बोलते हैं? इसीलिए कि यहां मिलता कुछ नहीं है। खाली गिलास में, खाली भाग में क्या मिलेगा बाबा? कोई तृप्ति करने वाली चीज तो नहीं मिलेगी, खाली पड़ा है। सच्चाई ये कि नाम और रूप से भी जगत बस खाली का खाली ही है। किसी भी चीज को आप देख लीजिए, नाम और रूप को पकड़ करके आप अपनी तृप्ति नहीं कर सकते। इस घड़ी में से यदि घड़ी शब्द और घड़ी की जो आकृति है, इस आकृति को अलग करके हम क्या हासिल कर सकते हैं? यदि ये पदार्थ न हो, ये वस्तु न हो, तो आकृति मात्र और घड़ी शब्द मात्र से हमें क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हां, ये नाम और ये रूप, घड़ी और घड़ी की आकृति जिस वस्तु के ऊपर कल्पित है, यदि वस्तु मिल जाए तो टाइम देखने में काम आ सकती है, उसका उपयोग होगा, लेकिन इस वस्तु को अलग करके केवल आकृति की कल्पना और नाम की कल्पना करके हम चले जाएं, उसे मिलने वाला क्या है? वो तो खाली का खाली ही है ना, नाम भी है रूप भी है, उसे मिलने वाला क्या है? ये जगत का खाली अंश है, रिक्त अंश है। जैसे गिलास आधा खाली है, ये नाम रूप से तो जगत खाली का खाली ही रहेगा, कोई हासिल होने वाला नहीं है। परंतु एक विज्ञ पुरुष है जो श्रुति के आदेश का पालन कर रहा है, वो इस जगत को खाली अंश में नहीं देखता है, वो इस जगत को भरे हुए अंश में देखता है। वो जगत का भरा हुआ अंश कौन है? अस्थि भाति और प्रिय रूप। कोई भी वस्तु जगत की संसार के देखो, पांच को लेकर के सिद्ध हो रही है, अस्थि भाति प्रिय नाम और रूप। उसमें नाम और रूप वो रिक्त अंश है, स्वतंत्र रह करके आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। अस्थि भाति प्रिय रूप के आधार पर रह करके व्यवहार चला सकते हो, लेकिन नाम और रूप स्वतंत्र कोई आपको सिद्धि नहीं दे सकते, क्योंकि वाचारंभ है, केवल वाणी का विकार मात्र है, कहने का ही है, इससे कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। बजाय इसमें जो भरा हुआ अंश है अस्थि भाति प्रिय, यदि व्यक्ति उसको देखता है तो आधे गिलास के दूध को भी पीकर के तृप्त हो सकता है, वो दूध उसको तृप्ति देगा। ठीक इसी प्रकार से अस्थि भाति प्रिय रूप जो अंश है संसार में, वही है परमात्मा का अंश, वही है ईश्वर अंश, वही है ईश्वर का स्वरूप, समझ लो आप। इसलिए भगवती श्रुति कह रही है, जो नाम रूपात्मक पदार्थ चराचर दृश्य दिखाई पड़ रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, जहां हमारी दृष्टि जा रही है, उन सब में उस खाली अंश को, नाम रूप को बाधित करो और अस्थि भाति प्रिय रूप से उसकी जो पदार्थों की आत्मा है, उस आत्मा का सर्वत्र दर्शन करो, सर्वत्र दर्शन करो। ये अनुभव करने के लिए, अब आप देखिए मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं, ये क्या है? घड़ी है। वाक्य पूरा तभी बनेगा जब हम कहेंगे कि घड़ी है, और इसके बजाय यदि मैं कहूं कि ये क्या है, माला है। अब ये घड़ी है, ये माला है, जो घड़ी है वो माला नहीं है, माला है वो घड़ी नहीं है। घड़ी में माला का व्यतिरेक है, माला में घड़ी का व्यतिरेक है, एक में दूसरी चीज नहीं है। परंतु एक ऐसा अंश है इस वाक्य के अंदर जो घड़ी के अंदर भी विद्यमान है और माला के अंदर भी विद्यमान है, वो क्या है? है घड़ी है, माला है, पुस्तक है। ये है तत्व एक ऐसा है जो सर्वत्र विद्यमान है, बल्कि जो दिख रहा है उसमें भी विद्यमान है, और जो दृष्टि का विषय नहीं हो रहा है, हमारी कल्पना है, उस कल्पना का भी अधिष्ठान है। हाथ में घड़ी है, और अब कह सकते हैं कि हाथ में घड़ी नहीं है, वो नहीं को भी प्रकाशित कर रहा है और होने को भी प्रकाशित कर रहा है। भाव और अभाव दोनों ही वृत्तियां जिससे प्रकाशित हो रही है, वो है सर्वत्र विद्यमान है, उसको हिंदी भाषा में है कहोगे और संस्कृत में उसको अस्थि कहोगे। यहां पर भगवती श्रुति कह रही है, ये जिसको आप है बोलते हो, जिसको अस्थि बोलते हो, अस्थि इति सत, और जो है वही सत है, उस सत तत्व का ही सर्वत्र दर्शन करने का अभ्यास करना चाहिए, उसी को देखो। क्यों? इसीलिए कि जो नाम और रूप हैं, आकृतियां हैं, उनके शब्द हैं, वो सब बनते हैं, बिगड़ते हैं, परिवर्तित होने वाले हैं। परंतु देखिए, है एक ऐसा तत्व है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, ऐसा तत्व है जिसका कभी भी किसी में अभाव नहीं होता, ऐसा तत्व है जिसका कहीं पर भी अभाव नहीं होता। सर्वत्र सब में और सर्वकाल में, देश में, काल में, वस्तु में एक रूप है, वो है यह सत, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। उस ईश्वर का अनुभव करो, अनुभव करो। दर्शन का अर्थ है उसको अध्यात्म चिंतन से अनुभव करो, हो सके तत्वमसि महावाक्य के द्वारा उसको अनुभव करो। पहले ये शास्त्र के द्वारा परोक्ष रूप से जानो कि है कोई ऐसी सत्ता जो सबके अंदर बैठी हुई है, परोक्ष रूप से उसको जान लीजिए। वो सत्ता सबके भीतर बैठी हुई है, वो ईश्वर है, वो ब्रह्म है। और फिर गुरु सन्निधि में, गुरु उपसत्ति में महावाक्य शोधन के द्वारा उस तत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए कि वो अस्ति, वो सत्य है, वो प्रत्येक आत्मा है, वो साक्षी है, वो आत्मा में स्वयं हो, इस प्रकार से उसका अनुभव करना चाहिए, अप्रोक्ष अनुभव करना चाहिए। शास्त्र के द्वारा जिसको परोक्ष रूप से जाना है उसको अप्रोक्ष रूप से अनुभव करना चाहिए। वही तो मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार से जब व्यक्ति दर्शन करता है तो लगता है जो कुछ है मैं ही तो मैं हूं, भेद है मेरे में कल्पित है, ईशावास्यम इदम सर्वम, तब जाकर के ये सब ईश्वर से आच्छादित होगा। नहीं तो महाराज ऐसा करोगे कि सब में ईश्वर की भावना करने की बात यहां पर नहीं कही जा रही है, भी ध्यान देना। ये उपासना नहीं कही जा रही है, ये तो ज्ञान दिया जा रहा है। आप विचार के द्वारा नाम रूप को बाधित करिए। अब नाम रूप को जब बाधित कर रहे हैं तो व्यक्ति एक भूल यहां कर लेता, थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है। ये होता है कि वो सब में देख रहा है कि नाम रूप मिथ्या है, इसका आधार परमात्मा, इसका आधार परमात्मा है, सब में देख रहा है लेकिन अपने को छोड़ करके देख रहा है। ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है। सब में देखने का प्रयास करने वाला वो अपने को अलग कर लेता है। अरे सब दिख रहा है, बाहर दिख रहा है, उसी प्रकार से सामने वाले का शरीर दिख रहा है, जहां बैठ करके तुम चिंतन कर रहे हो वो शरीर भी ऐसे ही दिख रहा है। पड़ोस में बैठे हुए का शरीर जैसे दिख रहा है उसी प्रकार से इस शरीर को भी देख रहे हो, ये भी उसी प्रकार से है, ये भी नाम रूप से मिथ्या ही है। इसलिए अपने को भी इस प्रकार से ये जिसको शरीर आदि के साथ में तादात्म्य करके देख रहा है उन सबको दृश्य जगत में ले जाना चाहिए, नाम रूप से उसका बाद करके और अहम ब्रह्मास्मि के रूप में निश्चय करना है। वस्तु तो यही देखना, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब में अपने स्वयं को भी ले लेना, अपने को अलग मत कर लेना। यत किंच जगत्याम जगत, इस चलायमान जगत में पृथ्वी पर यह शरीर भी तो उसी का अंश है, ये शरीर कोई उससे अलग नहीं है। तो सबको नाम रूप रूप से देख करके बाधित करो कि यह सत्य नहीं है, ब्रह्म नहीं है, यह परमात्मा नहीं है और यह शरीर आदि मैं नहीं हूं, ऐसा निश्चय कर लो, ये सब मैं में कल्पित है। इस प्रकार नाम और रूप का जो बाद करना है वो बाधात्मक ही त्याग है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उस त्याग के द्वारा भुंजी था काल यथा, आचार्य शंकर लिखते हैं। भुज धातु जो होती है वो दो अर्थ में होती है, एक होती है खाने के अर्थ में, भूंगते खाने के अर्थ में होती है, और दूसरा अर्थ होता है परीक्षा के अर्थ में। ये है ना, इसको क्या बोलते हैं, भुजा, भुज धातु से भुजा शब्द बनता है। इसको भुजा क्यों बोलते हैं, ये भुजा रक्षा करने का काम करती है। आ जाओ तुम्हारी भुजा में ताकत हो, लोग ऐसा बोलते हैं युद्ध के लड़ते समय, क्योंकि भुजा ही रक्षा करने वाली होती है। तो भुज धातु दो अर्थ में है, खाने के अर्थ में और रक्षा के अर्थ में। बहुत सारे लोग यहां मंत्र का अर्थ कर लेते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग करके खाओ, त्याग से खाओ। भाई है तो बड़ी आश्चर्य की बात, त्याग से खाओ है? हाथ में जो ग्रास लिया आपने उसको तो त्याग कर दो, फेंक दो और फिर खाओ, बुद्ध तो व्याघात होगा कि नहीं, कैसे संभव है? त्यागना और ग्रहण करना, त्याग है तो ग्रहण नहीं है और ग्रहण है तो त्याग नहीं है। इसलिए आचार्य शंकर बहुत गहराई से इसका अर्थ करते हैं। जो लोग ठीक है त्यन त्यक्ते ने भुंचिता करने का एक कर्म में अर्थ कर लेते हैं कि पहले त्याग करो और जो प्रसाद बच जाए तो खा लो, सेवन कर लो, ठीक है, उस दृष्टि से लोक व्यवहार की दृष्टि से उतने अंश में वो अर्थ निरर्थक नहीं हो सकता, लोक व्यवहार में काम का है। परंतु जिस स्तर पर यहां पर श्रुति बोल रही है और जहां का यह मंत्र है, उपनिषद मंत्र है, पूरे वेद का सारभूत है, वहां इतना सामान्य साधारण सा अर्थ नहीं हो सकता है। यहां त्याग का अर्थ है नाम रूप का त्याग, नाम रूप के प्रति जो सत्य बुद्धि है उसका त्याग, बाधात्मक त्याग है यहां पर। उस त्याग के द्वारा जब नाम रूप में बाधात्मक त्याग कर दिया तो व्यक्ति में जितने भी आसक्ति बनी हुई है, जितने इच्छाएं उठती हैं, वो नाम रूप को लेकर के ही तो उठती है। इसलिए आचार्य लिखते हैं कि पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा ऐष्णा त्रय से जो ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है, ऐष्णा त्रय से ऊपर उठ करके और अपनी रक्षा करनी चाहिए, स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। ये ज्ञान की दृष्टि से बोल रहे हैं, उपासना नहीं है। या निधिध्यासन करो, बैठकर निश्चय पूर्वक ऐसा चिंतन करो कि सर्वांतर जो है सबकी आत्मा ही एक सत्य है, नाम रूप मिथ्या है पर वो आत्मा मैं हूं। बैठ करके साधक को ऐसा निश्चय करना चाहिए, निधिध्यासन है ये। उसको ठीक से समझाने के लिए चूंकि उपासना का प्रसंग नहीं है, भावना का प्रसंग नहीं है, आचार्य शंकर ने यहां एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। उदाहरण बहुत अच्छा दिया, एक चंदन की लकड़ी है, भाष्य में पढ़ना आप लोग, एक चंदन की लकड़ी है, लंबे समय से कोई नाले में पड़ी हुई है, गंदे पानी में पड़ी हुई है और पड़े पड़े उस चंदन की लकड़ी के ऊपर वो गंदा पानी का लेवल आ गया है और उसको बाहर निकाल करके देखा तो बदबू आ रही है, खराब हो गई है। अब चंदन की लकड़ी में बदबू, उसका स्वभाव नहीं हो सकता, चंदन की लकड़ी में तो खुशबू होती है, बदबू नहीं होती है। परंतु है चंदन की लकड़ी, उसमें बदबू आ रही है, किस लिए आ रही है कि वो कीचड़ में पड़ी हुई थी। अब चंदन की लकड़ी में जो स्वाभाविक खुशबू है, उस खुशबू का आनंद लेना है तो उसका दो तरीका है। उसी जगह पर यदि खुशबू लेनी है तो एक तरीका यह होगा कि वो चंदन का जो सेंट आता है, इतर आता है, उसके ऊपर छिड़क दीजिए। कभी कभी बदबू को मिटाने के लिए आप खुशबू फेंकते हैं। एक बार बहुत पहले महाराज श्री जी त्यागमूर्ति जी महाराज गुरुदेव, उनकी सेवा में रहता था, इधर कहीं जूस किम की तरह किसी के भोजन में गए, तीसरे चौथे माले पर उनका प्लेट था। अब हम तो भोजन के लिए गए और उसके प्लेट के ऊपर जो प्लेट था पांचवें छठे माले वाला, वो आमिष भक्षी परिवार था, हो सकता मछली पका रहा हो, और इतनी बदबू नीचे वाले प्लेट में जहां हम बैठे हैं। अब भोजन करने का समय हो रहा, भोजन क्या करें, एक दिन पहले किया वो भी निकल करके बाहर आने की स्थिति हो गई, उल्टी जैसा मनो हुआ ठहरा न जाए। बेचारों ने अपनी खिड़की बंद किया फिर भी ऐसी बदबू फैल गई रूम के अंदर। फिर कोई जाकर के उन्होंने सेंट पूरे मकान में सेंट छिड़क दिया, तब कहीं जाकर के सेंट की खुशबू इतनी बढ़ गई कि वो जो बदबू है थोड़ी दबने लगी, तब जाकर के भोजन कर पाए। तो उस बदबू को दबाने का एक तरीका होता है कि ऊपर से खुशबू फेंक दो। चंदन की लकड़ी के ऊपर जो बदबू आ रही थी, यदि वहां पर चंदन का सेंट छिड़क दिया जाए तो खुशबू आएगी कि नहीं? खुशबू शुरू हो जाएगी, चंदन की खुशबू आने लगेगी, लेकिन वो खुशबू अस्थाई है, वो थोड़ी देर के लिए है। वो सेंट जब उड़ जाएगा तो फिर वही बदबू शुरू हो जाएगी। परंतु बजाय यदि उस चंदन की लकड़ी पर जितनी गंदगी लगी हुई है उसे सारी गंदगी को हटा दिया जाए और लकड़ी को घिस करके अंदर की जो खुशबू वो प्रकट कर ली जाए तो वो स्थायी खुशबू होगी, उसको मिटाया नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार से उपासना में और इस निधिध्यासनात्मक जो ज्ञान है, इनमें दोनों में यही अंतर होगा। हम एक भावना भी करते हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलानित शांतोपासित, ये उपासना है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, उसी से पैदा हो रहा है, उसी पर टिका हुआ है, उसी से मैं विलीन हो जाने वाला है, वो ब्रह्म ही है। बैठ करके ऐसा ध्यान करो, ऐसी भावना करो, बहुत अच्छी बात है। ऐसी भावना करेंगे तब तक आपके भीतर में राग द्वेष सुप्त रहेगा, नष्ट तो नहीं कह सकते, मिटा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन जितने समय ये भावना रहेगी कि सब ब्रह्म है सब ब्रह्म है, तब तक राग द्वेष सुप्त रहेगा, सोया हुआ रहेगा, आप शांति में रहोगे। लेकिन जो ही ये भावना आपकी रुकी, जो ही आपने उपासना छोड़ी और व्यवहार पक्ष में आए, ये मेरा और ये तेरा, ये अच्छा और ये बुरा, राग द्वेष फिर वहां पर खड़ा हो जाएगा। जैसे सेंट उड़ गया फिर बदबू शुरू हो गई, तो उपासना में स्थायित्व नहीं होता है। ठीक है, उपासना अभ्यास करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है, होना ही चाहिए, शास्त्र प्रतिपादित साधन है, लेकिन यहां पर श्रुति उपासना की बात नहीं बोल रही है, यहां श्रुति निधिध्यासन की बात बोल रही है। विचार करके आप जैसे चंदन की लकड़ी का सारा ऊपर का कचरा हटा देने पर भीतर की खुशबू प्रकट हो जाती है, ऐसे ही आत्मा में जो छाया हुआ नाम रूप का कचरा है, नाम रूप के प्रति सत्य बुद्धि है, उसे सबको हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, और जब नाम रूप सबका सब बाधित हो जाता है तो आत्मा स्वरूप की जो आनंदाभिव्यक्ति है वो अपने आप प्रकट होने लगेगी, वो अखंड आनंद आएगा, अखंड खुशबू की तरह। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता, उस त्याग के द्वारा ही, नाम रूप के बाधात्मक त्याग से ही आपकी अपनी रक्षा संभव है। इसलिए रक्षा करो, भुंजिता आत्मानं पालये था, अपने आप की रक्षा करो। आचार्य ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, आपकी रक्षा और कुछ नहीं, कोई नहीं कर पाएगा, आपकी रक्षा दूसरा नहीं कर सकेगा, स्वयं की रक्षा तो स्वयं को ही करनी होगी। इसलिए पालये था, रक्षा करो, अपने आप की रक्षा करो, ये पालन के अर्थ में यहां पर धातु है, भुज धातु। मा गृध कस्य स्विद्धनम्, जब नाम रूप को मिथ्या सिद्ध कर दिया तब ये जो वित्तेष्णा पुत्रेष्णा लोकेष्णा जो होती है, जाया मे स्यात अथ पुत्रम कुर्वीत, एक इच्छा होती है मनुष्य को, मुझे पत्नी प्राप्त हो, कारण बोले जिससे मैं पुत्र प्राप्त कर सकूं, पत्नी की कामना है, पुत्र की कामना है, वित्तम मे स्यात मुझे धन प्राप्त हो, ये कामना एक इच्छा होती है, एक मान सम्मान की कामना होती है। आचार्य कहते हैं ऐष्णा त्रय से विचार के द्वारा ऊपर उठो, क्योंकि ये सब का सब मिथ्या है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, मरा हुआ पुत्र भला किसका है, त्यक्त पुत्र भला किसका है, ये नौकर भला किसके होते हैं। आचार्य ने तीनों का उदाहरण दिया है, ये अपने नहीं हैं, अपने से अलग हैं, अपने है नहीं लेकिन अपना मान लिया है, इसलिए व्यक्ति को ऐष्णा त्रय से ऊपर उठ जाना चाहिए, इच्छा मात्र रहनी नहीं चाहिए, सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को देख रहे हैं तो इच्छा किसकी कर रहे हो? जानते हुए मिथ्या पदार्थ की कामना करना यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए मां हृदय कस्य स्विधनम, यह गृद्ध शब्द भी जरा चुभने वाला दिया है भगवती श्रुति ने। एक पक्षी होता है, इस शब्द से मिलता जुलता उसका नाम है गृद्ध। गिद्ध बोलते हैं हिंदी भाषा में उसको, है? हाँ, जो भी आप समझ गए, वो पक्षी जो होता है भाई, अन्य पक्षियों की अपेक्षा उसकी उड़ान जरा हाइट पर होती है, बहुत ऊंची उड़ान लेता है गिद्ध पक्षी। उड़ान ऊंची होती है, लेकिन इतनी ऊंची उड़ान भरने पर भी उस पक्षी की जो दृष्टि है वो बहुत गंदी जगह पर होती है। वो इतनी ऊंची उड़ान भर के देखता है कोई मरा हुआ मृत प्राणी पड़ा हो जिसका मांस नोच नोच करके खाया जाए। पक्षी की उड़ान ऊंची है और दृष्टि नीची है। भगवती श्रुति यहां सावधान करते हुए चुभते हुए शब्द बोल रही है, उस पक्षी के जैसा जीवन मत बनाओ, उसके जैसा जीवन मत बनाओ। क्यों? तुम एक उच्च कोटि के साधक हो, तुम्हारी उड़ान बहुत ऊंची है, तुम वेदांत के अधिकारी हो, उस परमात्मा के जिज्ञासु हो, एक सत्य के अन्वेषक हो, इसलिए उड़ान बहुत ऊंची है। तब ऐसी स्थिति में गंदी जगह पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। ये मिथ्या, ये मृत नाम रूपात्मक जो जगत है, ये मेरा और ये तेरा, इस मिथ्या वस्तु में सत्य बुद्धि करना इतनी ऊंची उड़ान भरने वाले एक साधक के लिए अशोभनीय है। तो क्या करो? मां गृह, अभिलाषा मत करो, लालसा मत करो, लालच मत करो। क्यों? किसका लालच करते हो? धन का लालच करता व्यक्ति, पर भला कस्य स्विद्धनम, ये धन है किसका? दो अर्थ है इसके, धन किसका है, किसका है, ये नहीं पूछ रहे हैं कि किसके सिग्नेचर से निकाला जाएगा, ये नहीं पूछा जा रहा है, यह आक्षेप किया गया है। भला धन है किसका? अर्थात पहली एक दृष्टि है ये मिथ्या वस्तु है, और मिथ्या वस्तु भला किसकी है? आप वो जो सीप होती है नदी के किनारे, समुद्र के किनारे सीप, उसमें जो दिखने वाली रजत है, चांदी है, वो भला किसकी है बताइए? वो किसी की नहीं है, मिथ्या है ना, है ये नहीं? जो मिथ्या वस्तु होती वो किसी की नहीं है। जब शास्त्र स्पष्ट कर रहा है कि नाम रूप जगत संपूर्ण मिथ्या जगत है, तब इसमें जिसके प्रति गृधा कर रहे हैं, कौन सी ऐसी वस्तु है जो सत्य है? वो मिथ्या वस्तु आपकी कैसे हो जाएगी? इसलिए मां गृध है, मिथ्या वस्तु की गृधा मत करो, अभिलाषा मत करो, आकांक्षा मत करो। धन उसका उपलक्षण है मिथ्या वस्तुओं का, धन किसका है, अर्थात मिथ्या वस्तु किसी की नहीं होती। दूसरा इसका अर्थ होगा एक व्यवहारिक दृष्टि से, मां गृध कस्य स्विद्धनम, गृधा मत करो, ये धन किसका है, आज तक तो किसी का भी नहीं हुआ। कितने मेरा 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 करते आए, कर गए और चले गए, लेकिन ये सब यहीं का यहीं है। एक राजस्थानी संत ने बहुत सुंदर पद लिखे, नाम ही उनका सुंदरदास था, और जैसा नाम था वैसे उनके पद है। वो कहते हैं कि मेरो धन मेरो धाम, मेरो सुत मेरी बाम, बार बार कहियो तो ही सावधान क्यों न होई, बार बार कहियो तो ही सावधान क्यों न होई, ममता की पोट सिर काहे को धर तू है, मेरा है मेरा है काहे को ये गांठड़ी माथे पे बांधी, बार बार कहियो तो ही सावधान क्यों न होई, ममता की पोट सिर काहे को धर तू है, मेरो धन, मेरो धाम, मेरो सुत, मेरी वाम, मेरे पशु, मेरे ग्राम, भूलियो यूं फिर तू है। तू तो भयो बावरो, पागल हो गया। तू तो भयो बावरो, विकाई गई बुद्धि तेरी। ऐसो अंधकूप गृह तामतु परतु है, सुंदर कहत तोई नेक होना आवे लाज, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करतु है। जो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता उसको मेरा मेरा कर रहे हो, और जो तुम्हारा असली कर्तव्य था कि शुद्ध ब्रह्म मैं हूं, मैं रूप से अनुभव करना था, उसको कभी किया नहीं, और जो कभी मैं और मेरा नहीं हो सकता उसको मैं और मेरा करके सारी जिंदगी बर्बाद कर डाली, कितना अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हो। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से कहते मां गर्द कस्य स्विधनम, मेरी दृष्टि से शायद व्यवहारिक दृष्टि से भी इस मंत्र का कोई अपने जीवन में थोड़ा अंश भी, ये चतुर्थ अंश भी धारण कर ले, कस्य स्विधनम इस वाक्य को भी याद कर ले, तो शायद कम से कम वकील और जजों की तो दुकान बंद हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। वो किसके लिए तड़प रहा है व्यक्ति, तो बहुत सुंदर श्रुति संदेश दे रही है। इस संदेश को यदि अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, जीवन सार्थक है, सफल है। वेद का मंत्र आया है, केनोपनिषद का बहुत सुंदर मंत्र है, इह चेद अवेदीत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदेन महति विनष्टि। इस सत्य परमात्म तत्व को इस जीवन में जान लिया तब तो हमारा जीवन सार्थक है, अन्यथा महति विनष्टि, हानि होगी, और छोटी मोटी नहीं, महान हानि होगी। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य यही है, इस आत्मस्वरूप की अनुभूति करना। परंतु सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जब करने लगते हैं तो कितने व्यवधान आते हैं। अगर व्यवधान आते हैं तो उसका कारण है कि अभी हम उस स्तर पर नहीं आए हैं, उस लेवल पर नहीं आए हैं, उस श्रेणी पर नहीं पहुंचे हैं। नहीं पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचेंगे, जानना है तो कल से आपको नियमित होना पड़ेगा, आगे वही आएगा। यदि नहीं पहुंच पाए हैं तो पहुंचने की योग्यता कैसे मिलेगी, उसके लिए बहुत सुंदर मंत्र आगे आएगा। घड़ी इनकार कर रही है, कल इस पर विचार करेंगे, कल इस मंत्र को और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।